खुदावन्द खुदा का हर एक वादा सच्चा और बरहक है। उसने कहा है कि मेरा हर एक वादा हाँ में है, आमीन के साथ है। इसलिए आए, खुदावन्द खुदा ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम सब उससे उसका कलाम मांगेंगे। खुदावन्द तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम जैसे दाऊद की रहनुमाई बना, तेरा कलाम जैसे यशबा मूसा और कालब का जोर बना, तेरा कलाम जैसे खुदावन्द खुदा यर्मिया के लिए हौसला और आग और हथौड़े की मानक बना, तेरा कलाम जैसे पालूस के लिए धोधारी तलवार बना। आज तेरा कलाम हम सब के लिए, हमारी जरूरतों के लिए। अगर हमें आग की जरूरत है तो वो आग के शोले बनकर खुदावन्द खुदा हमारी तमाम खुदावन्द खुदा बातों को, सोचों को, ख्यालों को जला कर भस्म करे जो तेरी तरफ से नहीं है। अगर आज हमारे कलाम, हमारी जिंदगी में तेरा कलाम खुदावन्द हौसला अफजाई की जरूरत के लिए इस्तेमाल हो तो खुदावन्द तेरी पाक मर्जी पूरी हो। आज हम सब की रहनुमाई के लिए, तसल्ली के लिए और खुदावन्द खुदा तरबियत और नसीहत के लिए और ईमान की भरोती के लिए खुदावन्द अपने कलाम को कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले और हम सब कम होते जाएं, तू बढ़ता जाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां आ जाएं। जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं वो मेरे साथ निकालें। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावन्द यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से बाब के अखीर तक यानी के 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि यीशु एक मांगने वाले को क्या देता है, जो अंधा है शिफा देता है। यहां पर इस मौजे को देखेंगे और हमने सुना है, देखा है और आगे चलकर भी देखेंगे कि वो मौजजात का क्या है जी, खुदा है। सो यहां पर जब हम देखते हैं तो क्या हुआ, जब वो चलते चलते यहू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी, यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, ए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चलाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़ा होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावन्द ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदावन्द खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। इस वाक्य में हम देखते हैं एक बड़ी भीड़ है और उस बड़ी भीड़ के साथ चलने वाला यीशु मसीह है और यीशु मसीह का एक मुंतजर है जो उसके नाम से वाकिफ है, जो उसके कामों से वाकिफ है, जिसने उसका चर्चा सुना हुआ है, जिसने उसके बारे में जाना है कि वो क्या करता है जी, अजीब अजीब काम करता है। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु कहां पर जा रहा है, यही शहर की तरफ जा रहा है और शहर में दाखिल होने से पहले शहर के बाहर क्या है जी, एक अंधा भीख मांग रहा है। एक अंधा भीख मांग रहा है। हमें इसके बारे में नहीं बताया गया कि वो कितने सालों से अंधा है। कुछ के बारे में बताया जाता है कि उसको कितने सालों से क्या है जी, अंधापन है, बीमारी है या उसकी लाचारी है। सो जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं मिसाल के तौर पर 38 बरस के बीमार को, वो 38 बरस से, जिसे कहते हैं 38 साल से, वो उस हौज पर बैठा हुआ है कि कब उसे क्या मिले जी, शिफा मिले। उसके बाद एक जन्म के अंदर को देखते हैं यूहन्ना की झील 9 बाप में, उसके बारे में क्या लिखा है, वो जन्म का अंधा था, अपनी पैदाइश ही से वो देख नहीं सकता था कि हरियाली क्या होती है या फिर रंग कैसे होते हैं, दुनिया कैसी नजर आती है। इस भिखारी के बारे में हमें नहीं पता कि ये कितनी देर से अंधा है, लेकिन क्या है जी, वो राह के किनारे बैठा हुआ क्या मांग रहा है जी, भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, और यही उसका काम रह गया है, कोई और उसके पास काम नहीं जिसे वो कर सके कि अपना गुजर बसर करे। तो यहां पर देखते हैं कि जब ये बंदा राह के किनारे बैठा हुआ, तो यीशु मसीह उस शहर को जा रहा है, और शहर के बाहर ही क्या है जी, उसने इस बड़ी आवाज को सुना, बड़ी भीड़ को सुना जो बातें कर रही है, जो कह रही होगी, हाँ हाँ मैंने देखा, मैं वहां पर था जब उसने एक कोढ़ी को शफा दे दी, हाँ हाँ मैं वहां पर मौजूद था जब उसने 10 को कहा कि जाओ जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाओ, हाँ मैं भी वहां पर मौजूद था, उनमें से 9 तो वापस नहीं आए, एक ने आकर क्या दी है जी, गवाही दी थी, दूसरे ने कहा होगा हाँ मैं वहां पर मौजूद था जब उसने एक और मौजदा किया, वो मौजदा खुराक का था, खुराक खाने का मौजदा था, एक बच्चा था उसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, उसने जब दिया तो उसने सबको हैरान कर दिया, और भाई क्या हुआ, वो दिन मेरे लिए सबसे अजीब दिन था कि मैंने उस दिन सबसे ज्यादा खुराक खाई और उस जैसी खुराक पहले मुझे कभी नहीं मिली, इतना लजीजा खाना। वहां पर गुफ्तगू बातचीत चल रही होगी, चर्चा हो रहा होगा यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि लिखा है कि भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है, वो देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं वो सुन सकता है, उसके सुनने के कान तेज हैं, क्योंकि उसके सुनने ही पर उसकी जिंदगी का दारो मदार चल रहा है। और मुझे एक अंधा अमरीका में मिला, उसको इतना अंदाजा हो गया था कि वो जो छोटे पैसे जिसे कहते हैं कि जी हमारी जुबान में यहां पर हम उसे कहेंगे जी 25 पैसे, 50 पैसे या फिर 10 पैसे या 5 पैसे, जब उसके कौले में कोई फेंकता था तो उसे पता चल जाता था कि ये कितने पैसे उसे दिए गए हैं। अगर कोई उसे $1 देता था तो वो हाथों से महसूस कर सकता था कि ये कितने डॉलर हैं, उसे पता चल जाता था, और यहाँ तक कि वो लोगों को वापसी चेंज दे सकता था अंदाजे से कि ये $1 है, ये $5 है, ये $10 का नोट है, और ये $20 और 50 और 100 का नोट है। इस अंधे को देखते हैं, इसकी जिंदगी का हमें अंदाजा लगता है कि उसके कानों पर क्या है जी, उसकी जिंदगी का सारा दारोमदार है। जब उसके उस कौले पर, कौले में, जब उसकी उस बोरी पर जहां पर वो बैठा होगा या जो बर्तन लेकर बैठा होगा, जब कोई भीख के लिए वहां पर 1 शेकल, 5 शेकल, 10 शेकल या फिर कोई दिनार या दिरहम जिसे कहते हैं दिरहम फेंकता होगा, वो आवाज से जान जाता होगा, महसूस कर लेता होगा कि ये कितनी रकम है। सो इस अंधे को हम देखते हैं, वो देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। आज बहुत से लोग इस दुनिया में हैं, आंखें रखते हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान रखते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, क्योंकि उनकी आंखें बंद है, उनके कान क्या हो चुके हैं जी, बहरे हो चुके हैं, वो ऊंचा सुनना पसंद करते हैं। लेकिन संदे को देखते हैं, भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये भीड़ अनोखी थी, ये भीड़ ऐसी भीड़ नहीं थी कि जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सामने एक गुनाहगार औरत को लेकर फकी फरीसी नारे लगाते हुए कहते हैं कि गुनाहगार जनाकार जनाकार उसे लेकर आ रहे हैं और हाथों में पत्थर पकड़े हुए हैं और शोर डाल रहे हैं, इसे मूसा की शरीयत के मुताबिक संसार किया जाए। भीड़ की उसको ये आवाज बाकी तमाम भीड़ों से अलग नजर आ रही है। ये रोमी हुकूमत का दस्ता नहीं गुजर रहा, ये किसी को सजा देने की बात नहीं हो रही, ये किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, या किसी का कोई मसला शहर के बाहर नहीं हो रहा, या महसूल लेने का मसला नहीं चल रहा। उसने जब सुना कि भीड़ की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने उसे खबर दी। यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। इसने उनसे पूछा है, मांगा है कि बताओ भाई क्या हो रहा है, और उन्होंने खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी जा रहा है, यहां से रूम का कोई शहनशाह नहीं जा रहा, यहां से कोई रब्बी या फकी या कोई और मजहबी रहनुमा नहीं जा रहा। उसका नाम का तारफ क्या है जी, कि यीशु नासरी जा रहा है। और यीशु अपने कामों और मौजजात और अपने अजीब कामों के बायस क्या हो चुका था जी, मशहूर हो चुका था। वो यरू में मशहूर था, वो गलील में मशहूर था, वो नासरत में मशहूर था, वो पैतनिया में मशहूर था, वो तमाम यर्दल में मशहूर था, वो रूमियों के क्या है जी महलों में मशहूर था, वो काहिनों की गुफ्तगू का मेन मरकज था। हर एक उससे वाकिफ था कि भड़ाई का बेटा है जो अजीब अजीब काम करता है। और उसका चर्चा क्या था जी, हर एक के जहन में, हर एक के जुबान पर था। और उसका तारफ क्या करवाया जाता है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, भाई यीशु नासरी जा रहा है। जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो उसने क्या किया, लिखा है उसने चलाकर कहा बड़ी ऊंची आवाज से, अपनी आवाज को उसने पहले ऐसे बुलंद नहीं किया होगा कि दे दो मुझे यहोवा के नाम से, मुझ पर रहम करो, मुझ पर तर्स करो, मुझे भीख दो। इस वक्त उसने अपनी पूरी हयाती में हम कह सकते हैं कि इतनी बुलंद आवाज से कहा होगा, इस भीड़ की तमाम बातों में से गुजर कर आवाज किस तक पहुंचे, यीशु मसीह पर। कभी कभी हमें पुकारने की जरूरत है, चलाने की जरूरत है। यशाया के सहीफे में पढ़ते हैं, खुदा खुदा खुदावंद खुदा क्या कहता है यशाया को, बुलंद आवाज से पुकार और मेरे लोगों पर उनके गुनाह को जाहिर कर। कभी कभी हमें कहना पड़ता है खुदावंद रहम कर, खुदावंद मेरी सुन, खुदावंद तरस कर। कभी कभी जब दुनिया की भीड़ हमारे इर्द गिर्द इतनी ज्यादा होती है तो हमें क्या करना होगा, चलाना होगा, पुकारना होगा। उसने चलाकर कहा ए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो यीशु को उन नामों से पुकारता है जिनसे उसने सुना होगा बचपन ही से कि एक मसीह आने वाला है। वो दाऊद की नस्ल से है, वो क्या करेगा जी, बनी इसराइल कौम पर रहम करेगा। तो यहां पर वो कहता है यीशु इब्ने दाऊद, दाऊद के बेटे, जो तू मसा किया हुआ है, जो तेरे लिए हमने नबूतों को सुना है, मुझ पर रहम कर। और जब वो चला चला कर कह रहा है तो यहां पर देखते हैं एक बात को, जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह। आपकी जिंदगी में, आपकी रूहानी तरक्की में आपका मौजजा जो पा सकते हैं, आपका जो अजीब काम खुदा ने आपके लिए रखा है, जब आप उसे पाने के लिए उसे पुकारेंगे, उसे चलाएंगे, उसे कहेंगे ए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, अपने उस मकसद को, अपने उस मंसूबा को मेरी जिंदगी में पूरा कर, तो लोग कहेंगे चुप हो जाओ, लोग कहेंगे ना ना ना, लोग कहेंगे कि ये ना कहो। यहां पर ये लोग जो आगे जा रहे हैं, ये क्या है जी, उन फकीयों फरीसियों जैसा रवैया है जो लोगों को क्या कर रहे हैं जी, खुदा की बादशाही और उसके नजदीक जाने से रोक रहे हैं। इसराइल नहीं, और वो क्या कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं कि मत कह मत कह, और वो उसे डांटते हैं, दबकते हैं, उसे कहते हैं कि मत कह। और क्या होता है, कहता है जी जो आगे जाते थे उसे डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और चलाया और कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो रुका नहीं। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में किसी को भी हमारी उस रूहानी तरक्की के लिए रुकावट का बायस ना बनने दे जो हमें खुदा की तरफ या मसीह की अपादत और उसकी प्रस्तश और हमारे लिए उसका मौजजा है रोकती है। इसलिए अपनी अपनी जिंदगी में अगर आपका कोई अजीज दोस्त है, सहेली है, जो बचपन की है, जो आपको कहती है कि जी आप यीशु की बनिस्बत मेरे पीछे चलो, तो वो दोस्त आपका दोस्त नहीं, वो सहेली आपकी सहेली नहीं। अगर कोई रिश्तेदार, अगर कोई मजहबी रहनुमा अगर आपको कहता है कि इस राह पर ना जाओ जो यीशु की राह पर है, तो उस पर जाने से क्या ना करें जी, रुके ना, बल्कि और ज्यादा उसे करना चाहिए। और यहां पर लिखा है उसे रोकने वाले बथेरे थे, उसे रोकने वाले बतेरे थे। हमें कौन से रोकने वाले हैं? हमारी बहुत दफा अपनी सुस्ती हमें रोकती है, हमारी बहुत दफा हमारी लाचारी हमें रोकती है, बहुत दफा हमारे अपने ख्याल हमें रोकते हैं, बहुत दफा हमारे अपने हालात हमें रोकते हैं, बहुत दफा हमें लोगों के ताने मेरे रोकते हैं, बहुत दफा हमारे दोस्त हमारी सहेलियां हमें रोकती हैं कि यीशु का हाथ ना पकड़ो, यीशु के हाथ को छोड़कर मेरा हाथ थाम लो। लेकिन इस अंधे ने क्या किया, उसने कहा क्या कि मैं जो कुछ सुनता हूं मैं उस पर यकीन करूंगा। और क्या होता है जी, वो बार बार कहता है ए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मिसाल के तौर पर अगर ये अंधा भीख मांगने वाला उसके आगे जाने वालों से ये डांट टपक सुनकर कि भाई मत चलाओ रुक जाता, तो क्या कभी वो अंधा शफा पा सकता था? क्या कभी उसकी आंखें खुल सकती थी? क्या कभी वो देख सकता था? क्या कभी वो दोबारा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकता था? नहीं। आप और मैं भी अगर दुनिया को और दुनिया की कोई भी रिश्तेदारी को, कोई भी ख्वाहिश को अपने और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने में रुकावट बनने देंगे, तो हम कभी भी अपना मौजजा अपनी जिंदगी में जो खुदा ने ठहराया है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग आपको रोकेंगे, दुनिया आपको रोकेगी, आपकी अपनी जात में बैठा हुआ वो पुराना गुनाह आलूदा फितरत वाला रवैया आपको रोकेगा, अपलीस आपको रोकेगा, हालात आपको रोकेंगे, शर्मिंदगी आपको रोकेगी, डर आपको रोकेगी। अगर आप नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, यीशु कहेगा कि तूने क्या किया है जी, उस सारे इम्तहानों को पास कर लिया और फिर भी नहीं रुका, तो यीशु मसीह फिर क्या कहेगा, खड़ा होकर हुक्म देगा कि इसे मेरे पास लाओ, इसे मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, फिर वो कहेगा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये सवाल बड़ा ही जबरदस्त है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, अगर किसी फौत की घर में फौतगी हो जाए, अगर किसी बच्चे को बीमारी लगी हो, अगर किसी का बारिश की वजह से मकान गिर गया हो, अगर किसी की गाड़ी खराब हो गई हो, अगर किसी का खेत खराब हो गया हो, अगर किसी का जानवर मर गया हो, अगर किसी ने क्या है जी कोई ऐसा फैसला किया है उसका कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है, और हम अगर उससे पूछें कि भाई बहन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तो फिर आगे से जो जो जवाब है वो बड़ा ही अजीब हो सकता है। एक जवाब हो सकता है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, सवाल पर सवाल है, भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम मेरे लिए क्या वाकया ही कर सकते हो? और सारी बात क्या होगी जी, उलझन में पड़ जाएगी। इस अंधे ने क्या किया है, ये नहीं कहा कि हाँ यीशु ने मुझसे पूछा है कि मैं उसके लिए क्या करता कर सकता हूं, क्या करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं उससे क्या पूछूं, उसने अपनी जरूरत को फट से बता दिया कि मैं दोबारा देखना चाहता हूं, मैं अंधा हूं, मुझे नजर नहीं आता, मैं देखना चाहता हूं। इसके इस बयान में जब उसने ये कहा कि मैं बीना हो जाऊं, मुझे बनाई मिल जाए, मुझे देखना शुरू हो जाए, मुझे नजर आना शुरू हो जाए, तो वो दूसरे लफ्जों में कह रहा है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं कि तू कैसा है, मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया कैसी है, मैं देखना चाहता हूं दुनिया के रंग कैसे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि जिस जगह पर मैं बैठा हूं वो कैसी है, मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस जगह पर पला फला हूं, मैं देखना चाहता हूं हर एक उस बात को जो इस दुनिया में है। तो यीशु ने उसे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यही बात पुराने अहदनामों में यीशु तेरे लोगों से पूछता आता है, सुलेमान सुलेमान तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। दुनिया की धन दौलत शोहरत सब कुछ तेरे सामने है, और वो कहता है कि ये सब कुछ तूने मेरे बाप दादा को दिया है, मुझे हिकमत और दनाई दे। यहां पर इस अंधे को यीशु कहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और यीशु का जवाब वो किस तरह देता है, उसने कहा ए खुदावंद मैं बीना हो जाऊं, मैं बनाई पाऊं, मैं आंखें हासिल करूं। और यीशु मसीह ने उसके जवाब में क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। उसके ईमान को क्या है जी, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा इस जुमले को सुनने के लिए कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बहुत दफा हमें चर्च आते आते वक्त क्या है जी, या सुस्ती घेरती है, या कोई ना कोई बात चले जाती है, या ना कोई मसला बन जाता है, कपड़े इस्त्री नहीं किए, घर में भाई ने बात कर दी वो रुकावट, लड़ाई का बास हो गया, बीवी के साथ सही गुफ्तगु नहीं हुई, चाय अच्छी नहीं बनी, बिजली बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। हम जब उन रुकावटों को अपने रास्ते में खड़े होने देंगे तब तक हम यीशु मसीह से नहीं सुनेंगे कि यीशु तू कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इस बंदे ने क्या कहा, इसके ईमान को पहले देखते हैं, उसने सुना है, देखा नहीं है। और लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, देखने से नहीं। जब तक हम सुनकर ईमान नहीं लाएंगे तब तक हम मौजजा नहीं देखेंगे। इसने देखा नहीं है, सुना है, और उस सुने पर ईमान लाया है कि वो ऐसे ऐसे काम करता है, और उसने कहा मुझ पर रहम कर। उसकी सादा सी दरखास्त है मुझ पर रहम कर। उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करके मेरे भीख के अड्डे पर ज्यादा लोग भीख डालना शुरू कर दे, ये नहीं कहा कि मुझे इसके साथ कोई और सहूलत मिल जाए। उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं, इस दुनिया को देखूं, मुझे आंखें अता कर ताकि मैं अपना हाथ अब से भीख के लिए नहीं, अगर अपना हाथ उठाऊं तो तेरी तारीफ के लिए, अगर अपना हाथ इस्तेमाल करूं तो कमाई के लिए, अगर अपना हाथ इस्तेमाल करूं तो रहनुमाई के लिए, जैसे मेरी बथेरों ने रहनुमाई नहीं की। हो सकता है उसकी जिंदगी में बथेरों ने उसे गलत राह पर रहनुमाई दी हो, तूने यरू जाना है उसे सामरिया भेज दिया हो, तूने सामरिया जाना है उसे गलील भेज दिया हो, ये काफला कुफर नहूम को जाता है, ये काफला कहां पर जाता है जी, ये दाऊद के शहर यरूशलेम को जाता है। उसे हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत सी बातों ने रोका हो कि सही जगह पर सही वक्त पर हो, लेकिन आज वो क्या था जी, उस रास्ते पर बैठा था जहां से यीशु ने गुजरना था, यीशु ने गुजरना था। और इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने उसके जिस्मानी अंधेपन को दूर किया है, और जकई की जिंदगी को पढ़ते हैं तो जकई के रूहानी अंधेपन को दूर किया है, और यीशु मसीह यरू में जाते वक्त मौजदा करता है, यरू में दाखिल होते मौजदा करता है, और यरू से निकलते हुए खुदावंद खुदा के नाम को जलाल देते हुए अपने मकसद को पूरा करता है। और यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और आगे क्या लिखा है, सब मिलकर कहेंगे, वो उसी दम बीना हो गया। वो उसी दम क्या हो गया जी, देखने लगा। सब मिलकर कहेंगे, वो उसी दम देखने लगा। और देखने के बाद उसने क्या किया है, खुदा की तमजीद करता हुआ। जब उसने देखा होगा यीशु ने से कहा, तो पहला चेहरा कौन सा उसके सामने आया होगा, यीशु इब्ने दाऊद, जिसने उस पर रहम किया। उसने उसे देखा और क्या करता है जी, खुदा की तमजीद करता है, खुदा की तारीफ करता है। और क्या करता है जी, एक जगह पर इसी का वाक्य मिलता है, जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो इसको बयान किया गया है कि वो क्या करता है, अपने भीख वाले उन कपड़ों को वहीं पर फेंकता है और जंप लगाता है, और क्या करता है, यीशु के पीछे हो लेता है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को, पुरानी अदाओं को, अपना सब कुछ जिस पर उस पर भरोसा था, उस भीख वाले कोले को छोड़ दिया, उस बैठने वाली जगह को छोड़ दिया, और किसके पीछे हो लिया, नई जिंदगी, नई आंखें। और नया क्या है जी, उसकी जिंदगी का मकसद है, वो सब कुछ छोड़कर किसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के। हमें भी अपनी जिंदगी में बहुत दफा मौजज़े के साथ साथ अपनी जगह को, जहां पर हम अटके हुए हैं, छोड़ने की जरूरत है। सोचने के तरीके कार को बदलने की जरूरत है, जगह को बदलने की जरूरत है, ताकि हमारे लिए जो मौजज़ा हुआ है, उस मौजज़े को वहां पर बैठकर नहीं, बल्कि किसी और जगह पर जाकर क्या कर सकें जी, ध्यान कर सकें। वो यीशु के पीछे हो लिया कि मैं जाकर सबको बताऊंगा कि मैं वो अंधा हूं जिसकी आंखों को यीशु नासरी ने खोला है। इसलिए अपने दोस्तों को बताएं, अगर आपके दोस्त आपको रोकने वाले बनते हैं तो उनकी मत सुने, क्योंकि आज बहुत से दोस्त और सहेलियां हैं जो आप हाथ दुरुस्त खुदावंद का पकड़े हुए हैं, उसे आपका हाथ छुड़ाना चाहती हैं, छुड़ाना चाहते हैं। वो दोस्त, वो हमदर्द, हमदर्द नहीं है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह की राह से गलत रास्ते पर लेकर जाए। अपने मौजे को हम कभी भी हासिल नहीं करेंगे अगर अपने दोस्तों की गलत रहनुमाई को सुनकर उनके पीछे चलेंगे, फिर कभी भी यीशु के पीछे चल नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सुनते रहें, सुने, जब उसकी आवाज को सुने तो कहें, ए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और वो आज आपसे बोल रहा है, वो आज आपकी जरूरत के मुताबिक आपके कानों में कह रहा है, मेरी बेटी मेरे हाथ को ना छोड़ना, मेरी बेटी मेरी तरफ देखते रहना। अगर तू पानी पर चल रही है तो मेरी बदौलत है, अगर तू पानी में डूबेगी तो वो तेरी बदौलत है, क्योंकि तूने अपनी आंखें मुझसे हटा ली हैं। इसलिए यीशु मसीह हमें हर रोज पानी पर चलाता है, और बहुत दफा हम पानी में डूबने की बात करते हैं। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके इस अंधे आदमी की शिफा को याद रखें, कि वो कोढ़ियों को शफा देता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो मुर्दे जिंदा करता है, और अपने अपने मौजज़े को पाने के लिए किसी को भी रुकावट का बाइस ना बनने दे। हम दुआ करेंगे। खुदा खुदा आज की सुबह बथेरे खुदा खुदा जरूरतमंद है यहाँ पर, शिफा के लिए, मौजज़े के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, रहनुमाई के लिए। खुदा खुदा जिन जिन की आंखें रूहानी तौर पर बंद है, तू खुदा खुदा सौल को पालूस बनाने की कुदरत रखता है। खुदा खुदा इस कलीसिया में एक एक नौजवान बेटे बेटी के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। खुदा खुदा सबको बेदार कर जो सुस्ती लापरवाही में और खुदा खुदा हर तरह की खुदा खुदा अबलीसी बातों और दुनिया की शरारतों में फंसी हुई और फंसे हुए हैं उनको निकाल ताकि वो खुदा खुदा तेरे पीछे चलने वाले बने। आज की सुबह आए हुए तमाम लोगों को बरकत दे। गुर्दों की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे, मेदे की सोजिश यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, पांव पर जो जख्म है वो यीशु के नाम में शिफा पाए, घुटनों का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे, पथरियां यीशु के नाम में गायब हो जाएं, गिल्टियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, का बंद कारोबार यीशु मसीह में बहाल हो और खुदा खुदा हर तरह की नातीदा कुवतें चल कर भस्म हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।